हरे कृष्णा। सो दिल्ली मंदिर में आकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। बहुत भव्य मंदिर और बहुत ही अच्छा वातावरण यहाँ में, बहुत भव्य वातावरण। और सबसे अच्छी बात कि बहुत अच्छे भक्त जुड़ रहे हैं, बहुत से भक्त आ रहे हैं। इससे श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही प्रसन्न होंगे। एक ऐसा प्रसंग था कि नव वृंदावन, अमेरिका में एक प्रोजेक्ट है जिसको कहते हैं नव वृंदावन, न्यू वृंदावन। तो जब भी वहाँ में एक बहुत सुंदर भवन का निर्माण हो रहा था, उद्घाटन होने का था, तो श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायी प्रभुपाद जी को उस भवन में लेकर गए और सब व्यवस्थाएं बताने लगे कि ये भवन में ये सब व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। और उसमें भक्तों का की ये एक इच्छा थी कि श्रील प्रभुपाद जी का जो भवन, जो प्रभुपाद पैलेस ऑफ गोल्ड से कहलाता है, एक बहुत भव्य भवन है। प्रभुपाद जी के अनुयायियों का की इच्छा थी कि क्यों ना यह भवन जैसे पूरे पुराने जमाने में, पुराने युग में सुधर्म, जैसे द्वारका में श्री कृष्ण जी का असेंबली हॉल था, वह रत्नों से प्रकाशित था। तो भक्त चाहते थे कि प्रभुपाद जी का भवन भी रत्नों से प्रकाशित हो। ये इलेक्ट्रिकल वगैरह कनेक्टर, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, कभी कभी ये शौक भी देते हैं, अच्छा भी नहीं है लगता इतने। उनकी इच्छा थी कि क्यों ना रत्नों से प्रकाशित किया जाए। तो प्रभुपाद जी ने भी को ये प्रश्न पूछा गया, भक्तों ने पूछा कि क्या इस युग में भी संभव है कि रत्नों से आपके इस भवन को प्रकाशित करें हम। तो प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया जो सबके हृदय को स्पर्श करेगा। प्रभुपाद जी ने कहा, मेरे भक्त ही तो रत्न है, मेरे भक्तों से ही यह भवन प्रकाशित होगा। और खाली यह भवन ही नहीं बल्कि पूरा विश्व प्रकाशित होगा इन रत्नों से। और ये प्रभुपाद जी के कहे हुए वचन सत्य निकल रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से दुनिया भर में कृष्णा कॉन्शियसनेस फैलाई जा रही है। प्रभुपाद जी वही सेनापति हैं जिसका श्री चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर जी ने किया है। चैतन्य महाप्रभु जी ने तो भारत भर में प्रचार किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में एक ऐसा मोरा सेनापति आएगा, मेरा एक सेनापति आएगा जो ये संदेशा सागर पार करके अमेरिका, जर्मनी, सब जगह में जाकर प्रचार करेगा। तो ये भविष्यवाणी चैतन्य महाप्रभु जी की श्रील प्रभुपाद जी ने ही पूरी की। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का एक श्लोक है भगवद गीता का सातवें अध्याय का 21 नंबर श्लोक। यो यो याम तनुम भक्ता श्रद्धया चितम इच्छति तस्या तस्या चलम श्रद्धाम तम एवा विदधाम्य हम। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। आप कृपा करके मेरे पीछे दोहराइए, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। ईश्वर तत्पर्य ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। ठीक है, मैं अभी पढ़ूंगा। ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है, अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकें। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पाश में घिरने ही क्यों देता है। इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करें तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः वे सर्वों का पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे, किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवद गीता से प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा। जीव आत्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है, अतः जीव आत्मा न तो स्वेच्छ से किसी देवता की पूजा कर सकता है। ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं, वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरणार्थ एक रोगी को सूर्य देव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है और सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिवजी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने के प्रबल इच्छा की प्रेरणा देता है और उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता के पूजन को विधि भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा हैं जो समस्त जीवों के हृदयों में हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप हैं, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं, अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं, वे स्वतंत्र नहीं है। ये लास्ट सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं, वे स्वतंत्र नहीं हैं। मुकम करोति वाचनम पंगुन लंगयते गिरिं यत कृपा तम हम वंदे श्री गुरुदीना तारिणम परमानंद माधवम। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी जीव में जब भौतिक इच्छा को भोगने, भौतिक सुख को भोगने की इच्छा होती है, तो भगवान उसकी ही बुद्धि स्थिर कर देते हैं ताकि वो देवताओं के पास जाए। और देवताओं के हृदय में स्थिर भगवान ही ऐसे देवताओं के उपासकों की इच्छा पूरी करते हैं। ऐसा नहीं कि जो देवता हैं वो स्वतंत्र हैं, वो स्वतंत्र नहीं है। देवता जो हैं सब भगवान के अंश ही हैं। सो ऐसे में जैसे कि एक वृक्ष हो और वृक्ष की शाखाएं हो, उपशाखाएं हो, जब हम जल को विधि विधान से मूलों में डालेंगे, जड़ों में डालेंगे, तो ये जल जो है अपने आप शाखाओं में, पत्तों में, फूलों में, फलों में अपने आप वितरित हो जाएगा। हमको अलग अलग से करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही जब भी हम कोई भी शरीर में अंग शरीर को पोषित रखना चाहते हैं, अलग अलग से हमको हाथ को खाने की जरूरत देने की जरूरत नहीं है, अलग अलग अंगों को देने की जरूरत नहीं है। विधि है, खाना ले जाए और पेट में जाएगा, रक्त बनेगा और सब शरीर जो पूरा शरीर जो है वो पोषित हो जाएगा। सो वैसे ही क्योंकि ये देवता जो हैं ये सब भगवान के शरीर के अंश हैं, दिव्य शरीर के अंश हैं। ये भगवान यस्मिन तुष्टे कृष्णा जगत तुष्ट, भगवान संतुष्ट हो जाए तो सब जीव अपने आप संतुष्ट होते हैं, जब देवता अपने आप संतुष्ट होते हैं। श्रीमद् भागवत का भी यही कथन है कि चाहे कोई संसार को भोगना चाहता हो, चाहे कोई मुक्ति प्रदान करना चाहता हो, कोई भी इच्छा हो, अकामा सर्व कामवा मोक्ष काम उधार दीर तीव्रेन भक्ति योगेन ये जनते पुरुषम परम। चाहे कोई अकाम हो, भोक्ता कोई सुख भोगने, भौतिक सुख भोगने की इच्छा ना हो, अकामा सर्व कामा या फिर सब तरह की इच्छा हो, फिर मोक्ष काम मोक्षा की इच्छा रखते हैं, अगर वो उधार दी हो, अगर वो बुद्धिमान हो, तो यजते पुरुषम पराम, क्योंकि भगवान ही इच्छा हमारी पूर्ण कर सकते हैं। इससे पूर्व श्लोकों ने हमने पढ़ा है कि अक्सर लोग जाते हैं कांक्षता कर्म नाम सिद्धिम यजन्ते इह देवता, क्षिप्रम ही तम तम नियतम आस्थाया प्रकृतिया नियता स्वाया, के देवताओं के पास जगह कोई उपासक जाता है तो देवता बहुत शीघ्र बहुत जल्दी से उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं। इसलिए कई बार भक्त जो उपासक होते हैं, देवताओं के उपासक होते हैं, वो हरि की पूजा करने से हिचकते हैं कई बार, क्योंकि भगवान का एक नाम है हरि, क्योंकि वो हर लेते हैं। लेकिन वो क्या हरते हैं? वो हरते हैं वो चीजें जिससे हमारा को हानि होगी। इसलिए कई बार उपासक जो हैं वो भगवान की सेवा करने से हिचकते हैं, देवताओं की सेवा में लगते हैं, और देवता क्षिप्रम बहुत जल्दी शीघ्र बहुत शीघ्र ही अपने उपासकों को दे देते हैं। लेकिन ये देवता जो भी कुछ अपने उपासकों को देते हैं वो फायदामंद नहीं होता, अल्टीमेटली वो फायदामंद फायदा के लिए नहीं होता, उनके लाभ के लिए नहीं होता। और वैसे भी वो देवता जो है वो अपने और से ही नहीं दे सकता, ऐसा ही हमने आज इस तात्पर्य में पढ़ा है। भगवान देवता के हृदय में भी स्थित हैं, और अगर उनकी इच्छा हो तो वो देवता को भी प्रेरणा देते हैं कि चलो ये आया है, इसकी पूछा, इसको जो है इच्छा पूरी कर दो। तो वैसे भक्त कोई भौतिक इच्छा नहीं रखते, ये भक्ति का की परिभाषा, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनाविता अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्तिर उच्यते। ये कोई भौतिक इच्छा अगर भक्त के हृदय में कोई इच्छा रहे भी तो भी भागवतम का कहना है कि वो भगवान के पास ही जाए, ना कहीं किसी देवता के पास जाए। हालांकि कई पुराणों में लिखा हुआ है, कई देवताओं की प्रशंसा की गई है और कई देवताओं को परम माना गया है, तो ऐसे में एक बार देवी पार्वती अपने पति श्री शिवजी से प्रश्न पूछने लगी कि मेरे स्वामी, मेरी तो बुद्धि बहुत विचलित हो रही है, एक पुराण में कहा है कि शिवजी परम है, कहीं और कहा गया है गणेश परम है, कहीं और किसी और देवताओं की प्रशंसा की गई है, तो मेरी बुद्धि बहुत विचलित हो रही है, तो मेरे प्रिय पति आप ही मुझे बताइए कि वास्तविकता क्या है, कौन परम है। तो उसमें भगवान शिव जी कहते हैं कि आराधनाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम तस्मात परतरम देवी तदीयनाम समर्चनम। कहते हैं कि सब तरह की आराधना हो, आराधनाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम, विष्णु की आराधना सबसे परम है, और अगर विष्णु की आराधना से भी कुछ परम और आपको चाहिए, तस्मात परतरम देवी तदीयनाम समर्चनम। तदीयनाम का मतलब है भगवान के भक्तों की आराधना और भी ऊंची होती है। सबसे ऊंची तो भगवान की है, सब देवताओं के, सब शिवजी वैष्णव हैं, परम वैष्णव हैं। वो कहते हैं, उनका कहना है कि आराधनाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम, विष्णु की ही आराधना सबसे ऊंची है, और विष्णु आराधना में से भी ऊंचा चाहो तो तदीयनाम, तदीयनाम कहते हैं उनके भक्तों की, क्योंकि भक्त जो हैं भगवान उन भक्तों के नियंत्रण में ही रहते हैं। श्रीमद् भागवतम में ऐसा नौवें स्कंद में प्रसंग आता है जहां भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा मुनि से ऐसा कहते हैं कि अहम भक्त पराधिमो ही अस्य स्वतंत्र एवा द्विजा, अहम भक्त पराधिमो मैं तो अपने भक्तों के नियंत्रण में ही रहता हूं। ही अस्य स्वतंत्र दीजा, मैं अस्वतंत्र नहीं हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, जैसे मेरा भक्त कहेंगे मैं वैसे ही करता हूं, मैं उनके नियंत्रण में ही रहता हूं। और आगे चलकर भगवान कहते हैं कि साधु हृदयम महयम, साधु नाम हृदयस्तु हम मत अन्यत ना जानती ना तेभ्यो मनागपि, कि साधु मेरे हृदय में रहते हैं। साधु हृदयम महयम, साधु नाम हृदयस्तु हम, और साधुओं के हृदय में मैं रहता हूं। मैं साधुओं के हृदय में रहते, साधु मेरे हृदय में, साधु मेरे सिवाय कुछ नहीं जानते और मैं भी साधुओं के सिवाय कुछ नहीं जानता, मुझे साधु ही प्रिय होते हैं। सो कभी कभी भक्त कुछ विवशता के कारण भगवान के पास आते हैं और कुछ भौतिक सुख की अभिलाषा लाते हैं। तो इस पर चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है, भगवान बहुत विचारते हैं कि मेरे पास आया है और एक कुछ तुच्छ चीज मांगता है, विषय मांगता है, विषय विषय यानी कि सेंस ग्रेटिफिकेशन मांग रहा है। ये भक्त बहुत मूर्ख है, मैं तो इसको अपना आप दे सकता हूं, भगवान अपना आप दे सकते हैं भगवान भक्तों को। ये मूर्ख एक तुच्छ चीज मांग रहा है, भौतिक सुख मांग रहा है। भगवान सोचते हैं मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं कि ये जो भक्त मांगे वो दे दूं, उस भक्त को हानि ही पहुंचेगी, वो संसार के चक्र में और फंसता जाएगा, इसलिए मैं ऐसी स्थिति करूंगा बनाऊंगा उसके लिए, उस भक्त के लिए, कि वो मेरे चरणों का चरणामृत जो है, मेरी भक्ति का जो आनंद है उसका स्वादन करेगा, और ये जो भौतिक इच्छा की अभिलाषा कर रहा है वो छोड़ देगा। ऐसा होता है, भगवान के भक्त जब उनकी सेवा में आते हैं उनको इतना आनंद आता है, विषया विनिवर्तन्ते नीरहारस्य देहिना रसो वर्ज्यम रसो पियस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब भी भगवान की सेवा में आता है तो हायर टेस्ट, इतना ऊंचा रस मिलता है कि वो जो अपनी इंद्रिय तृप्ति का सुख था वो छोड़ देता, वो भूल जाता है। यही श्री बिल्व मंगल ठाकुर जी का एक बहुत सुंदर प्रसंग है, जिन्होंने एक बहुत सुंदर श्लोक कहा कि जो व्यक्ति, जब भी मैं भगवान की सेवा में लगा हूं तो मुक्ति मेरे दरवाजे पर खड़ी है, पूछ रही है कि कैसे मैं आपकी सेवा करूं, क्या आपके आपको दूं। सब भौतिक इच्छा, सब देवता उनको उनकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। एक ऐसे महान भक्त हुए बिल्वी मंगल ठाकुर जी, जो कि अपने पूर्व आश्रम में उनको बहुत ही आसक्ति थी, एक वैश्या के प्रति बहुत ही उनको आसक्ति होने लगी। तो एक बार जब भी उसके उनके पिता की मृत्यु हो गई, जल्दी जल्दी शमशान में गया और पुरोहितों को कहने का लगा, जल्दी जल्दी ये करो अंत संस्कार, मुझे जाना है। कहाँ जाने का था? उस वैश्यों को भोगने के लिए जाने का था, उसके लिए अपने पिता का संस्कार भी जल्दी जल्दी में कराकर चला। जैसे गया तो नदी पार करनी थी, रास्ते में भयंकर स्टॉर्म तूफान था, उसमें नदी में डूबने का बहुत डर था, एक मृत शरीर के ऊपर चढ़कर तैर पार कर, ये नदी तैर पार कर ली। और जैसे ही नदी के दूसरे पार पहुंचा, वैश्या के घर जाना था, बहुत ऊंची दीवार थी, कैसे लांगना उसको। तो देखा, उसको नजर आया कि एक रस्सी है, लेकिन रस्सी नहीं थी, एक सर्प था। सर्प कैसे उधर में फंस गया था और निकल नहीं पा रहा था। इतनी भयंकर स्थिति में सर्प को पकड़कर कैसे भी दीवार तक पहुंचा और फिर नीचे उतरा और वैश्या के पास गया उसको भोगने की उमंग लेके। तो जैसे ही उस वैश्या, उसका नाम चिंतामणि था, उसने देखा बिल्वी मंगल ठाकुर को कि तुम कैसे आ गए हैं, आधी रात को इधर आए हैं, इतना तूफान हो रहा है, बारिश आ रही है, इतनी ऊंची दीवारें, कैसे तुम लांग कर आए हैं। तो उसने सब बताया कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता था, मेरे पिताजी की मृत्यु भी होगी, मैंने जल्दी जल्दी अंतिम संस्कार कर लिए आपके पास आने के। तो ऐसा जैसे वो वैश्या चिंतामणि ने सुना तो कहने लगी, देखो बिल्वी मंगल, आपको मेरे प्रति इतनी आसक्ति है, अगर यही आसक्ति आपकी भगवान के प्रति होती तो आपको कितना भगवान से प्रेम होता, आपका जीवन सफल हो जाता। तो जैसे ही उन्होंने चिंतामणि के ये शब्द सुने, उन पर प्रभाव हुआ और वह छोड़कर चले गए चिंतामणि को वृंदावन के रास्ते। रास्ते में एक गांव में ठहरे और क्योंकि हमारी वासनाएं इतनी प्रबल हैं, इतनी स्ट्रांग हैं कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते, तो एक ब्राह्मण की पत्नी से फिर उनका मोहित हो गया। तो जैसे वो ब्राह्मण की पत्नी के पास भी उन भोगने की इच्छा प्रकट की, तो ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया, तो ये अतिथि है, आप इसको संतुष्ट कर दो। तो जैसे ही ब्राह्मण की पत्नी पहुंची बिल्वी मंगल के पास, तो बिल्वी मंगल ने कहा कि आप दो, उसने सुइयां लगाई हुई थी सिर में, दो सुइयां निकाल कर मुझे दो। तो दोनों सुइयां ले ली और दोनों आंखें फोड़ दी। तभी उनमें ये जागरूकता आई कि ये आंखें ही हैं जो इस मेरे काम मंच होने का कारण है। और ऐसे अपने आंखों को फोड़कर अंधा बनकर वह वृंदावन की ओर बढ़ते रहे। और फिर सूरदास जी नाम से भी वह प्रसिद्ध हैं। और हर रोज एक बालक आया करता था और दूध लेकर आता था, दूध का लोटा दिया जाता था, तो दूध का लोटा ले लेते हर रोज। तो उनके मन में बहुत ये इच्छा हुई जानने की ये बालक है कौन, हर रोज आता है और दूध का लोटा मुझे दे देता है फिर चले जाता है। तो ऐसे में उन्होंने ये एक दिन निर्णय लिया कि जब ये बालक आएगा अगले दिन, मैं इसको पकड़ लूंगा और मैं जानूंगा कि कौन है ये बालक। तो अगले दिन जैसे वो बालक आया और दूध का लोटा दिया बिल्वी मंगल ठाकुर को, तो बिल्वी मंगल ठाकुर ने अपने हाथों से उनकी बांह पकड़ ली। लेकिन वो बालक बहुत ही प्रबल था, शक्ति वाला था और उनकी बांध से निकलकर छूट गया। तो उस समय बिल्वी मंगल ठाकुर जी ने कहा, तो मेरे हाथों से तो छूट गया है, लेकिन मैं तुमको शक्तिशाली तब मानूंगा जब तू मेरे हृदय से चला जाएगा, क्योंकि भगवान अपने हृदय, भक्तों के हृदय में ही रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी एक बार अपने भक्तों के संग बैठे हुए थे और अपनी माता सची रानी जी को उन्होंने एक उनसे एक निवेदन किया कि माता एक मुझे वरदान दोगी, तो सची रानी ने कहा अवश्य जो भी कुछ मांगे मैं दूंगी, मुझे तो आप जान से भी प्रिय हैं। तो उन्होंने कहा मुझे ये वरदान चाहिए कि आप एकादशी के दिन कोई अन्न नहीं खाना। तो सची रानी ने कहा ठीक है, मैं आज से कभी भी एकादशी में अन्न नहीं खाऊंगी। फिर अचानक से निमाए खड़े हुए और कहने लगे कि मैं अभी घर जा रहा हूं। तो सब लोग वहां में उपस्थित थे, सब वक्त चकित रह गए, निमाई तो घर में ही तो है, तो क्या बोल रहा है? घर में बैठा हुआ ही निमाई बोल रहा है कि मैं घर जा रहा हूं। तो ये बात कोई वहां में समझ नहीं पाया। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम मुरारी गुप्ता जी को पूछे, क्योंकि मुरारी गुप्ता कौन है, हनुमान जी के अवतार हैं। तो उन्होंने सोचा कि मुरारी गुप्त जो हनुमान के अवतार हैं, ये श्री रामचंद्र जी के अंतरंग इच्छा क्या है वो सब जरूर जानते होंगे, तो मुरारी गुप्त से पूछें क्या है इसका रहस्य क्या है। तो उन्होंने पूछा मुरारी गुप्त से कि इस बात का रहस्य क्या है, घर में ही बैठे हैं और कह रहे हैं मैं घर जाऊंगा। तो मुरारी गुप्त ने समझाया कि भगवान का असली घर उनका भक्त का हृदय है, वो अपने भक्तों के हृदय में ही रहते हैं। साधु हृदयम मह्यम साधु नाम हृदय स्तम मत अन्यत न जानती ना ते भ्यो मनाग अपि। जो भी कभी भक्त आता है भगवान के पास कोई भौतिक इच्छा लेकर, भगवान उस तरह से पूरी करते हैं ताकि वो भक्त को फिर से विवश नहीं होना पड़े कुछ मांगने के लिए। ऐसा बताया जाता है कि एक बार एक बूढ़ी औरत जा रही थी, उसके सर पर लकड़ियों का ढेर रखा हुआ था, और ये लकड़ियों का जो ढेर था कैसे गिर गया नीचे। तो वो बेचारी चिल्लाने लगी भगवान क्या हो गया मेरी, मुझे मदद करो, बहुत हृदय से बहुत भाव से पुकार रही थी। तो भगवान वहां में प्रकट हो गए और भगवान कहने लगे हाँ मैया क्या चाहिए तुम्हारे को। तो वो कहने लगी कि ये जो लकड़ियों का ढेर है ना ये मेरे सिर के ऊपर रख दो। तो कुछ भी वो मांग सकती थी, भगवान स्वयं उसके पास है, उनके पास आए, लेकिन एक तुच्छ चीज मांगी कि यही ढेर मुझे मेरे ऊपर रख दीजिए। स्वयं देवता लोग भी तरसते हैं कि हमें भगवान की सेवा का अवसर मिले। चैतन्य महाप्रभु जी का संकीर्तन आंदोलन जो है इतना आनंद माया है, सबको आकर्षण कर सकता है। और जब भी चैतन्य महाप्रभु जी लीला कर रहे थे 500 वर्ष पहले नवद्वीप में, तो उनकी लीलाएं का दर्शन करने के लिए देवता भी आते थे। कई देवता तो साक्षात ही चैतन्य महाप्रभु जी की लीला में मगन थे, वेश बदलकर अनेक अनेक अवतार लेकर चैतन्य महाप्रभु जी की लीला में उपस्थित थे। जैसे ब्रह्मा जी हरिदास जी के रूप में आए, ऐसे कई और देवता, शिव जी भी एक ब्राह्मण के रूप में आए। तो ऐसे कई और देवता थे जो साक्षात चैतन्य महाप्रभु जी के जो लीला चल रही थी उसमें साक्षात शामिल नहीं थे, लेकिन अंतरिक्ष से इन लीलाओं का दर्शन कर रहे थे, अपने अपने पुष्प विमानों में आ रहे थे और चैतन्य महाप्रभु जी के लीलाओं का दर्शन करते थे। तो ऐसे में एक दिन कुछ देवता लोग आए और चैतन्य महाप्रभु जी की भव्य लीला उन्होंने देखी, पूरे मस्त रहे। और फिर जब ही उनको लौटने का समय हुआ तो उन्होंने दूर से देखा यमराज जी का विमान था वहां में अंतरिक्ष में। तो उन्होंने सोचा क्यों ना आज हम यमराज जी के भी दर्शन कर लें, क्योंकि यमराज तो एक महाजान है, 12 द्वार से महाजान है, उनमें से एक है। और भक्तों को यमराज से कोई भय नहीं होता, जिस भी व्यक्ति के गले में कंठी माला हो, तिलक लगा हो, जो भगवान का नाम जपता हो। यमराज ने अपने यमदूतों को आदेश दिया है ऐसे व्यक्ति के पास कभी नहीं जाना, नहीं तो स्वयं जो यमदूत हैं वो भी दंडित हो जाएंगे। तो ऐसे में भक्त यमराज जी को महाजान जानते हुए उनका भी आशीर्वाद लेना चाहते हैं, उनके दर्शन करने के अभिलाषी ये देवी देवता यमराज जी के पास गए। यमराज जी जब देखा उनका विमान, यमराज जी मूर्छित पड़े थे। ये बहुत ही विचित्र बात थी, यमराज जी जो सब जीवों को उनके पाप का दंड देते हैं और जो सब जीवों का आत्मा को लेकर दूसरे शरीर में करते हैं, देहांतर प्राप्ति दूसरे देह में डालते हैं, वो स्वयं मूर्छित पड़े हैं। ये देखकर सब देवता बहुत चकित रह गए। और इसका भी कारण जो है दूसरे प्रसंग से संबंधित है, वो ऐसा है कि महाप्रभु जी की एक और ये संकीर्तन की लीला चल रही थी और दूसरी ओर चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने भक्तों को भी आदेश दिया था, खासकर मुख्य पार्षद थे उनके नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, और उन्होंने आदेश दिया नित्यानंद प्रभु सुनो, सुनो नित्यानंद प्रभु, सुनो हरिदास, सर्वत्र अमार इच्छा कर है प्रकाश, घर घर गिया करो हे भिक्षा, भजो कृष्णा बोलो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। ये आदेश दिया, ये आदेश खाली नित्यानंद प्रभु और हरिदास के लिए नहीं है, हम सब के लिए है, ये हमारे लिए है, आपके लिए, सब के लिए है। तो एक बार हम बोलेंगे सुनो सुनो नित्यानंदा, सुनो हरिदास, सर्वत्र अमार आज्ञा कर है प्रकाश, घर घर गिया करो ए भिक्षा, भजो कृष्णा बोलो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। ये तीन चीजें उन्होंने कही, नित्यानंद प्रभु हरिदास आप घर घर में जाओ और ये तीन चीजों की भिक्षा मांगो, और चीजों की मांगने की जरूरत नहीं है, संसार में बहुत कुछ है, आटा दाल चावल घी ये नहीं मांगना, ये तीन चीजें ही मांगनी है। क्या? भज कृष्णा, दूसरा बोलो कृष्णा, तीसरा करो कृष्णा, ये तीन चीज मांगनी है। और ये आदेश हम सब के लिए लागू है। तो ऐसे में नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर गए और सब मोहल्ले में प्रचार करने लगे, काफी लोग स्वागत किया, लोगों ने उनका स्वागत किया। लेकिन एक मोहल्ले में दो दुष्ट भी रहते थे, जगाई और मदाई, आप सबने सुना होगा, उन दिनों तो दो ही थे जगाई मदाई, आजकल ज्यादा बढ़ गए हैं, सब तक हमें जगाई मदाई मिलेंगे। ये इतने दुष्ट थे कि सारस्त ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ लेकिन दिन रात मदिरा पीते, गायों का मांस खाते, निर्दोष बालकों को गंगा जी में फेंक देते, इतने दुष्ट पापी थे, लोग उनकी छाया में भी नहीं जाना चाहते थे, अगर कोई भूल से छाया में भी उन्हें चल जाए तुरंत गंगा जी में जाकर स्नान करता था ताकि पवित्र हो जाए, ऐसे वो पापी थे। तो जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी मोहल्ले में कीर्तन करते पहुंचे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो उनके कुछ भक्तों ने कहा कि प्रभु नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर वहां ना जाइए, ये दुष्ट तुम्हारे पर अत्याचार करेंगे, इनको छोड़कर आगे चले जाइए। नित्यानंद प्रभु ने कहा नहीं, चैतन्य महाप्रभु जी ने आदेश दिया है कि घर घर गिया करो भिक्षा, हर एक घर में जाओ। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि इनके पास नहीं जाओ, इनको छोड़ दो। जब भी चैतन्य महाप्रभु जी ने जब भी कृष्ण के रूप में अजामिल का उद्धार कर दिया, तो इसका भी उद्धार, इनको भी उद्धार कर देंगे। तो हमारा तो कर्तव्य है इनको भी महामंत्र सिखाना देना। तो कीर्तन करते जब भी गए, जब भी जगाई और मदाई, इन्होंने मदिरा पी हुई थी, नशे में थे पूरे। कीर्तन सुनते जाग उठे, सोचने लगे कौन है जिसका साहस है कि हमारे मोहल्ले में आकर ये कीर्तन करे। और उसमें से मदाई ने एक टूटा फूटा हुआ मटका था, वो उठाकर सीधा नित्यानंद प्रभु के माथे पर मारा, ऐसा मारा कि खून निकलने लगा। तो सब भक्त भागे भागे चैतन्य महाप्रभु जी को बुलाने गए, बहुत अनर्थ हो गया, अत्याचार हो गया, शीघ्र आइए, जल्दी आइए। महाप्रभु भागते भागते आए, अपना सुदर्शन चक्र लेकर आए इन दोनों दुष्टों का वध करने के लिए। तभी नित्यानंद प्रभु उनके चरणों पर पड़ गए और प्रार्थना करने लगे, प्रभु इस अवतार में आपको किसी का भी वध नहीं करना, क्योंकि इस कलयुग में सबकी बुद्धि इन पापियों जैसे ही है, बल्कि ये जो पापमयी बुद्धि है उसका नाश करना है, किसी का वध नहीं करने का है। और चैतन्य महाप्रभु तो अपने भक्तों के नियंत्रण में ही रहते हैं, जो भक्त मांगेंगे वो अवश्य देंगे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने कहा प्रभु इनको क्षमा कर दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने उन दुष्टों को क्षमा कर दिया, और क्षमा ही नहीं कर दिया बल्कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से उनको कृष्णा प्रेम भी दे दिया, जिससे वो हर रोज 200,000 नाम जपने लग गए। और उनके नेत्रों से लगातार प्रेम के आंसू बहने लगे। हम हर रोज 25,000 नाम होते, छोला माला होते हैं 25,000, वो करते थे 128 माला कन जपने लग गए, और प्रेम आंसू उनकी आंखों से बिल्कुल स्वभाव उनका बदल गया। अभी इसका संबंध यमराज से क्या है अभी बताते हैं। ये यमराज जी जब उन्होंने ये दुष्टों का, दोनों पापियों का हिसाब पूछा, उनके सेक्रेटरी हैं चित्रगुप्त, चित्रगुप्त हर एक जीव का जो पाप है पुण्य है, किस जन्म में क्या पाप क्या पुण्य क्या, पूरा हिसाब रखते हैं चित्रगुप्त। और उनके कंप्यूटर में कभी वायरस नहीं लगता। तो उन्होंने हिसाब पूछा इनका क्या हिसाब है, तो चित्रगुप्त ने बताया इनका हिसाब ऐसा है कि ये इतने पापी हैं कि इन पापों के लिए ही इनको करोड़ों जन्म नरक में सहने बीतने पड़ेंगे। मैं लिखते लिखते थक गया, इनके पापों को लिखने के लिए 1,00,000 लेखक 2 महीने के लिए चाहिए, तो इनका हिसाब पूरा होगा। मैं इतना नहीं कर सकता, मैंने छोड़ दिया। तो जैसे ही यमराज ने सोचा इनके लिए तो दोनों के लिए कुछ विशेष नरक बनाना पड़ेगा, उतने में क्या देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जी ने दोनों को क्षमा कर दिया, दुष्टों को जगाई मदाई को, और क्षमा ही नहीं किया बल्कि कृष्ण प्रेम दिया, जो इसमें दिन रात हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे, ऐसा कीर्तन करने लग गए। तो यमराज जी बहुत आश्चर्य हुआ उनको, इन दुष्टों के लिए तो विशेष नरक होना चाहिए था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी ने इनको क्षमा कर दिया, और क्षमा ही नहीं किया, कृष्णा प्रेम दे दिया जो इतना दुर्लभ है। कितने दयालु हैं मेरे प्रभु, उनकी कृपा पर दया, उनकी दया पर विचारते विचारते यमराज मूर्छित पड़ गए। तो अभी यमराज जी मूर्छित पड़े हैं, सब देवता उनके पास ये दृश्य देख रहे हैं। तो उन्होंने सोचा अभी यमराज जी मूर्छित हैं, अभी यमराज जी को हम उठाएं कैसे, जगाएं कैसे। तो उनको यह सुझा कि सब समस्याओं का एक ही हल है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम। सो क्यों नाम कीर्तन करें। सो जैसे ही वहां में देवता थे, इंद्र थे, चंद्र थे, ब्रह्मा जी तक थे, शिव जी, सब कीर्तन करने लगे हरे कृष्णा महामंत्र का। और जैसे ही हरे कृष्णा महामंत्र के ध्वनि उनके कर्णों से अंदर गई, तो यमराज जी की मूर्छा खुल गई। और जैसे उनकी मूर्छा खुल गए तो उन्होंने देखा ये तो सब देवता कीर्तन कर रहे हैं इतने भावुक होकर। तो यमराज जी भी उठे और वो भी नृत्य करने लग गए, और सबसे भाव ज्यादा भावुक होकर वो भी हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रसंग श्री चैतन्य भागवत में आता है। वृंदावन दास ठाकुर जी ने एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है चैतन्य भागवत। उसमें ये प्रसंग आता है कि यमराज भी मूर्छित हो गए चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा देखते हुए। तो इसी तरह के अंत का संपन्न में एक और प्रसंग सुनाएंगे कि सब भक्तों में से भक्तों की शिरोमणि श्री राधा रानी जी हैं। भक्त शिरोमणि राधा रानी हैं, फिर भी राधा रानी जी चाहती हैं कि मेरे कृष्ण के प्रति मेरी भक्ति बढ़ती ही रहे। ऐसे में श्री राधा रानी जी एक प्रसंग सुनाती हैं। राधा रानी जी एक प्रसंग सुनाती हैं ताकि, और साथ साथ श्री कृष्ण जी की कृपा की अभिलाषा करती हैं। राधा रानी जी अपने मुखारविंद से चैतन्य चरितामृत में यह प्रसंग आता है, कहती हैं कि एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण देवता थे, बहुत वृद्ध हो गए थे और उनको कोढ़ की बीमारी, लेप्रोसी से पीड़ित थे। कर्मों के अनुसार कोई भी जीव अपने कर्मों का फल से नहीं मुक्त हो सकता, पिछले जन्म में कुछ किए होंगे जिसके कारण, पाप किए होंगे जिसके कारण कोढ़ की बीमारी पूरे शरीर में हो गई। बहुत वृद्ध थे, कोढ़ की भी बीमारी थी। उनकी पत्नी बहुत सती थी और दोनों एक साथ में रहते थे, अपने पतिव्रता थी। लेकिन उस ब्राह्मण का गांव में एक वैश्या रहती थी, उससे बहुत आसक्ति होगी, उस मोह हो गया। तो ऐसे में वो जो ब्राह्मण की पत्नी थी उसने जान लिया। वो ब्राह्मण की पत्नी एक वैश्या उस गांव में रहती थी, वही वैश्या उसकी बहुत देर तक सेवा करने लग गई, उसके कपड़े धोती, खाना बनाती, उसके लिए घर सफाई करती, उसकी मालिश करती। तो वैश्या प्रसन्न हो गई और कहने लगी कि आप कुछ वेतन लीजिए, आप इतनी सेवा करती हैं। तो उसने कहा नहीं, मुझे कुछ वेतन नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मेरा पति आपसे बहुत मोहित हो गया है, एक बार उसकी इच्छा पूर्ण कर दो। वैश्या ने इनकार कर दिया, नहीं, आपके पति को कोढ़ की बीमारी है, लोगों को मालूम पड़ गया वो इधर आया है तो कोई मेरे साथ नहीं आएगा, मैं नहीं उसके साथ भोग करूंगी। वैश्या चली, ब्राह्मणी चली गई, कुछ दिन और फिर सेवा करती रही। अंत में जो वैश्या थी वो मान गई, ठीक है अपने पति को ले आओ, लेकिन रात के समय लेकर आना, कोई देख नहीं पाए, मैं उधर नहीं आएंगी, तुम्हारे घर नहीं आऊंगी, उसको इधर लेकर आना। तो ऐसे में ब्राह्मणी जो थी एक रात अपने पति को अपने कंधों पर उठाकर, पतिव्रत औरत थी, इंद्रियां हमारी वासनाएं इतनी प्रबल होती हैं कि उसका सड़ा सा शरीर था, पूरा खोड़ की बीमारी से सड़ रहा था, वृद्ध था, पर काम की वासना नहीं छोड़ती, काम की इच्छा तब तक भी रही थी। उसको लेकर जा रही थी अपने पति को, तो ऐसे में रात, अंधेरी रात थी, उस ब्राह्मण का चरण एक ऋषि मार्कंडेय ऋषि को स्पर्श कर दिया। तो मार्कंडेय ऋषि को जैसे चरण स्पर्श हुए, ये ब्राह्मण के कौन है जिसने मुझे चरणों से स्पर्श किया, कल सूर्य उदय होने से पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा शाप दे दिया उन्होंने। तो वह बेचारी ब्राह्मणी इतनी निराश हो गई, मैं तो अपने पति को सुख दिलाने के लिए लेकर आ रही थी और क्या हो गया, सूर्य उदय होने तक मेरा पति मर जाएगा, क्या हो गया। उस पतिव्रता औरत ने घोषणा कर दी कि अगर मैं पतिव्रता हूं, अगर मैंने मेरे पति के सिवाय किसी भी मर्द का स्वप्न में भी नहीं सोचा तो कल सूर्य उदय नहीं होगा। तो क्या हुआ, एक और मार्कंडेय ऋषि ने शाप दे दिया है कि सूर्य उदय होने पर उसकी मृत्यु, उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। दूसरी ओर ये पतिव्रता औरत कहती है कि कल सूर्य उदय नहीं हो, तो क्या हो? हुआ ऐसा कि पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा फैल गया, सूर्य उदय नहीं हो रहा था, बहुत भयंकर स्थिति है, सूर्य उदय नहीं हो रहा। कई भक्तों को अच्छा लगेगा, मंगल आरती नहीं आना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में सिचुएशन बहुत गंभीर है। अगर सूर्य नहीं उदय हो तो देवता गण गए भगवान विष्णु के पास के प्रभु बहुत अनर्थ हो गया है, सूरज ही नहीं उग रहा है, बड़ी भयंकर स्थिति हो गई है। शिव जी, ब्रह्मा और विष्णु तीनों ने निर्णय लिया, हम चलेंगे और उस पतिव्रता औरत से वार्तालाप करेंगे। तीनों देवता आए, तीनों देवता आए और उस पतिव्रता औरत से कहने लगे कि देवी, आपने जो घोषणा की है उसके कारण पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा फैल गया है, सब प्राणी तड़प रहे हैं, हमारा अनुरोध है आपसे कि आप अपनी घोषणा वापस ले लीजिए। तो उसने कहा फिर तो मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान विष्णु ने कहा आप घबराइए मत, उसकी मृत्यु तो हो जाएगी लेकिन मैं तो हूं ना यहां, में भगवद गीता में मैंने क्या लिखा है कि जीवनम सर्वभूतानाम, सब प्राणियों का जीवन मैं ही हूं। ऐसा विष्णु भगवान ने जब कहा तो उस पतिव्रता औरत ने अपनी जो घोषणा थी वो वापस ले ली। जैसे घोषणा वापस ले ली, सूरज उग गया, उदय हो गया, उगेगा सूरज उगा तो उसके पति की मृत्यु होगी। पर लेकिन भगवान विष्णु वहीं खड़े थे और उन्होंने वापस उस ब्राह्मण को जीवित कर दिया, और खाली जीवित ही नहीं कर दिया बल्कि उसका कुष्ठ रोग जो था पूरा दूर कर दिया और उसको यौवन बना दिया, नया यौवन शरीर दे दिया उसको। सो ये कथा राधा रानी जी सुना रही हैं, राधा रानी जी सुना रही हैं। क्यों सुना रही हैं? राधा रानी हालांकि सबसे ऊंची भक्त हैं, सबसे परम भक्त हैं, भक्त शिरोमणि हैं, लेकिन वो प्रार्थना करती हैं भगवान कृष्ण से कि मेरी भी भक्ति वैसी हो जैसे वो पतिव्रता औरत थी की है, जिसने अंधेरे में सूरज को उगा दिया। चैतन्य महाप्रभु की जय। अभी समय थोड़ा हो रहा है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।